आज का विषय है आध्यात्मिक शक्ति से चुनौतियों पर विजय। बहुत ही सुंदर विषय है। आप सभी भाई बहने जिन्होंने चाय ले ली होगी, सभी अपने अपने स्थान पर आकर के स्थान ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और इसके बाद में बहुत सुंदर कल्चरल प्रोग्राम भी आप देखने वाले हैं, इसीलिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लेफ्ट हैंड साइड जो भी भाई बहने खड़े हैं वो आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मंच को सुशोभित करने वाले हमारे अतिथिगण पधार चुके हैं, सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे और जोरदार एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। राजयोगिनी डॉक्टर बीके उषा दीदी जी, डॉक्टर सुनीता दीदी, चंद्रकला दीदी जी, डॉक्टर श्री गोपाल नरेशन जी भी आएंगे, आपका भी स्वागत है। बीके शकु दीदी जी, आज के कार्यक्रम के शुभारंभ के पूर्व परमपिता परमात्मा जो सर्व शक्तियों के स्रोत हैं, आध्यात्मिकता के स्रोत हैं, हम उनकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए 5 मिनट ध्यान में बैठेंगे। अब मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ, बड़ोदरा अलकापुरी की बहनों से, मंचासीन हमारे अतिथियों का, पुष्प तुल्य अतिथियों का बुकेज के द्वारा, बैज के द्वारा और अंग वस्त्र के द्वारा स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है, वंदन है, अभिनंदन है हमारे अतिथियों का। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं जो हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है। नेता, अभिनेता या फिर कलम के सिपाही ही क्यों ना हो, वो हैं चुनौतियां। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, स्वास्थ्य की, कभी संबंधों की, कभी आर्थिक, परंतु जब हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति होती है तो हम हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। आज का युग स्पीड और स्ट्रेस का युग है। हर इंसान किसी न किसी चुनौती से गुजर रहा है। सवाल यह है कि क्या हम इन चुनौतियों के गुलाम बनेंगे या इनके विजेता। इस संबंध में महाभारत का प्रसंग याद आता है। अनेकों युद्ध अकेले जीतने वाला वीर योद्धा अर्जुन महाभारत युद्ध के समय अवसाद ग्रस्त होकर के कायरों की भांति अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके बार बार भगवान से निवेदन करने लगा कि वह युद्ध नहीं करना चाहता है। क्या तब उसने अपनी तब उसे अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं था या फिर भगवान पर विश्वास नहीं था? भगवान ने उसे कौन सा ज्ञान दिया जिससे वह अवसाद से मुक्त होकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो गया? और मैं समझती हूँ आप सभी जानते होंगे वो कौन सा ज्ञान दिया। वो आध्यात्मिक ज्ञान ही था जिसमें आत्मज्ञान है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन है, गॉड रियलाइजेशन है, जिसके कारण वह अवसाद से मुक्त होकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो आज हमारे बीच में एक महान आध्यात्मिक विभूति विराजमान है, डॉक्टर उषा दीदी जी, जो इसी विषय को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने जा रही हैं। आपका मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। आदरणीय उषा दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू से आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका तथा प्रबंधन प्रशिक्षण हैं। 1980 से आप अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर चुके हैं। मुंबई और हैदराबाद केंद्रों पर आप सेवाएं करते हुए 1985 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित युवा वर्ष में आप भारत एकता युवा पद यात्रा में सम्मिलित हुई और गांव-गांव नगर नगर में जाकर के आपने आध्यात्मिकता का संदेश दिया है। उषा दीदी जी ने सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आध्यात्मिकता को आधुनिक प्रबंधन के साथ जोड़ करके अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और संस्थाओं विश्वविद्यालयों में लाखों लोगों को लाभान्वित किया है। टाटा गॉडरेज अनेक स्थानों पर आपने सेवाएं दी हैं। उषा दीदी जी के प्रवचनों की विशेषता है उनकी सहजता, स्पष्टता, व्यवहारिकता। आपने रामायण और श्रीमद् भगवद गीता पर गहन शोध करके उनके आध्यात्मिक महत्व को आधुनिक जीवन में कैसे लागू किया जाए इस पर अनोखी प्रस्तुति दी है, जो देश विदेश में जिसकी बहुत सराहना हुई है। तो मैं अनुरोध करती हूँ आज के विषय पर आदरणीय ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी को आप इस विषय पर प्रकाश डालेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तिमान सर्व के हितकारी निराकार परमपिता परमात्मा शिव के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर श्री गोपाल नारसन जी एवं हमारे वरिष्ठ बहन बीके शकू बहन जो विशेष घाटकों पर मुंबई से यहाँ पहुंचे हैं, वर्ड्स ऑफ विजडम देने के लिए हमारी परम स्नेही बीके चंद्रकला दीदी जी जो विशेष जयपुर से यहाँ पहुंचे हैं, और विशेष स्पीच देने के लिए हमारी बीके डॉक्टर सुनीता बहन जो यहाँ हेडक्वार्टर से है, मंच संचालन करने के लिए हमारी स्नेही बहन बीके विनीता जी जबलपुर से ख्यास यहाँ पहुंचे हैं, तथा सभा में सभी उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो विषय है आध्यात्मिक शक्ति से चुनौतियों पर विजय। वर्तमान समय के युग को कहा ही जाता है चुनौतियों से भरा युग। किसके सामने चुनौती नहीं होती है, और ये चुनौतियों में हर एक का जो प्रत्युत्तर है वो अलग अलग होता है। कभी किसी का तनावपूर्ण भी हो जाता है, तो किसी के जीवन में अवसाद भी आता है। जब सही तरीके से इन चुनौतियों को एड्रेस नहीं कर पाते हैं, तो चुनौतीपूर्ण युग में आवश्यकता आध्यात्मिक शक्ति की है। बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा, चुनौती हरेक के जीवन में आती है, लेकिन किसी किसी के लिए यही चुनौती अवसर के द्वार खोलती है, और किसी किसी के लिए यही चुनौती अवसर के द्वार को बंद कर देती है और खूब पछाड़ती है। तो किसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है, किसको ये पछाड़ती है? बहुत सुंदर वहां लिखा था कि चुनौती के वक्त जो सही निर्णय लेता है, राइट डिसीशन एट द टाइम ऑफ चैलेंजेस, उसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है, सिम सिम दरवाजा खुल जा। लेकिन चुनौती के वक्त जो थोड़े से स्वार्थ के कारण कहीं गलत निर्णय ले लेते हैं, रॉन्ग चॉइस कर लेते हैं, गलत चुनाव कर लेते हैं, उनके लिए ये दरवाजा हमेशा बंद हो जाते हैं और समय खूब पछाड़ने लगता है। बाद में उसको अफसोस करना पड़ता है, काश मैंने उस वक्त फलाने की नहीं सुनी होती, काश मैंने उस वक्त ये थोड़े से स्वार्थ के कारण ये डिसीशन नहीं लिया होता, ये चॉइस नहीं लिया होता, तो आज मैं कहां से कहां पहुंच जाता था। क्योंकि कहा जाता है कि ये चुनौती का जो द्वार है खुलने के लिए, अवसर के द्वार को खोलने के लिए जो चुनौती आती है वो बहुत कम समय देती है। जैसे एक कैमरा से क्लिक किया उतना ही समय मिलता है व्यक्ति को अपना चुनाव करने के लिए, ये चॉइस करना है, ये चॉइस करना है, क्या डिसीशन लेना है, ये डिसीशन लेना है, ये डिसीशन लेना है, और उसके बाद वो बंद हो जाता है, दूसरा मौका नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो बहुत देर बाद मिलता है। लेकिन ये गलत निर्णय क्यों लेते हैं? तो वहां पर बहुत सुंदर ये लिखा हुआ था कि चुनौती के वक्त व्यक्ति का जब फोकस धुंधला हो जाता है, क्लाउडेड हो जाता है, तो वो उस क्लियर विजन को देख नहीं पाता है, उसके पास एक क्लैरिटी नहीं होती विजन की, और जब विजन की क्लैरिटी नहीं है तो वो क्लाउडेड विजन के कारण गलत निर्णय ले लेता है, इसीलिए समय उसको पछाड़ने लगता है। लेकिन अगर उसका फोकस क्लियर है, माइंड और इंटेलेक्ट क्लियर है, और वो दूरदृष्टि अपनी रखते हुए देख सकता है और राइट डिसीशन ले लिया, तो वहां उसके अवसर के द्वार खुलते जाते हैं और वो आगे से आगे बढ़ता जाता है जीवन के अंदर। नहीं तो फिर अफसोस ही करना पड़ता है, काश मैंने ये एस्पेक्ट सोचा होता, काश मैंने ये पहलू को भी ध्यान में रखा होता था तो आज ऐसा नहीं होता था। अब ये क्लियर फोकस कैसे हो? क्लियर फोकस के लिए चाहिए, आवश्यकता है मेडिटेशन की। क्योंकि मेडिटेशन ही हमारे अंदर के सारे द्वंद जो है उसको दूर करती है, हमारी फोकस की क्लैरिटी बढ़ा देती है, हमारी दीर्घ दृष्टि जो है उसको बढ़ा देती है। तो मेडिटेशन बहुत आवश्यक है, और मेडिटेशन करने के लिए ध्यान जिसको कहा गया गीता में, तो ध्यान के लिए बहुत सुंदर बात कही है भगवद गीता में, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत आवश्यक है, जितना आध्यात्मिक ज्ञान होगा उससे उसके कई मन के प्रश्नों का हल होता है, क्योंकि दुनिया का नॉलेज क्या है आज, इंफॉर्मेशन। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज एंड वी हैव लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। वर्तमान समय का युग जो है सूचनाओं का है, आध्यात्मिक प्रज्ञा कहां है? आध्यात्मिक ज्ञान न होने कारण, जैसे बहन ने कहा कि भगवान ने अर्जुन को विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान दिया तब वो अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सका, और उस आंतरिक शक्ति की जागृति से ही वो युद्ध में विजयी हो गया। जीवन भी एक संघर्ष है, जहां हर कदम पर चुनौतियां हैं, और इसीलिए उसमें जीत प्राप्त करने के लिए हमें भी विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन आज सूचनाओं का युग है, इंफॉर्मेशन का युग है, और उससे भी आगे एक कदम चले गए, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब कहते हैं, जो है ही आर्टिफिशियल, तो बौद्धिक क्षमता जो व्यक्ति की अपनी होती है वो अपनी है नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसको कहां ले जाती है? कहीं ना कहीं आज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर जो विकृति है, नेगेटिविटी है, और वो जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जब नेगेटिव बुद्धि से यूज करता है तो जरूर है वो महाविनाश की ओर ही आगे बढ़ता है। तो इसलिए कहा कि हर चुनौती का एड्रेस करने के लिए सूचनाएं इनफ नहीं है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनफ नहीं है, आवश्यकता है आध्यात्मिक ज्ञान की। जो विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान, ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं तो माइंड का फोकस एकदम शांत और क्लैरिटी वाला होता है। आज जैसे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कि मनुष्य का जो फोकस है वो खाली धुंधला नहीं है, कंफ्यूज्ड है, और कंफ्यूजन के साथ साथ स्ट्रेस है। इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया है उसको कि कैसे अपने आप को संभाले, कहां से संभाले, उसको समझ में ही नहीं आता है। परिस्थिति को संभाले या उस घटना को संभाले या खुद को संभाले, उसमें ये भी उसको समझ नहीं है। इसलिए कहा क्या आध्यात्मिक ज्ञान हमारे कई मन के प्रश्नों का उत्तर देती है। इसलिए आध्यात्मिकता ये शब्द अध्ययन से आता है। अध्ययन से क्या होगा? तो कहा जब अर्जुन ने भगवान से पूछा यह आध्यात्मिकता क्या है, तो कहा अध्ययन के द्वारा। किस बात का अध्ययन? तो आत्मा का यथार्थ अध्ययन, परमात्मा का यथार्थ अध्ययन, जीवन की जो वास्तविकता है उसका अध्ययन। ये अध्ययन करते हुए स्वयं की इंद्रियों के ऊपर अधिपत्य को प्राप्त करना, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सोवेरनिटी जिसको कहा जाए, स्वराज्य अधिकारी बनना और उन्नति को प्राप्त करना, अध्ययन द्वारा आत्मा स्वयं के ऊपर अधिपत्य को प्राप्त करे अपनी इंद्रियों के ऊपर, और उन्नति को प्राप्त करे उस विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से, उसको कहा जाता है आध्यात्मिकता। अध्ययन करना आवश्यक है। जब तक अध्ययन नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जब किसी को कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, टाइम नहीं है लोगों के पास, और इसलिए इतने उलझे हुए हैं अपने लाइफ में, अनेक प्रकार के तनाव को लेकर के इतने उलझे हुए हैं, कहां से अपने आप को ठीक करें यही समझ में नहीं आता है। और उसके ऊपर से यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नकारात्मक तरीके से जब यूज करने लगता है, तो आज देखा जाता है कि कहां से कहां व्यक्ति को ले जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि सावधान। ये जरूर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई आज का नहीं है। जब से परमात्मा इस संसार में आए 1936 में, उस समय से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जन्म हुआ, लेकिन पहले बहुत छोटे रूप में था। सबसे पहला स्वरूप जो था उसका कैलकुलेटर, जिसने कैलकुलेशन इजी कर दिया। एक कैलकुलेटर हाथ में आया, बहुत इजी हो गया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही प्रथम जो स्वरूप था। फिर धीरे धीरे उसके बाद आया कंप्यूटर्स। कंप्यूटर जब आया तो लोगों को डर लगने लगा, जब सब जगह कंप्यूटर्स लग जाएंगे हमारी नौकरियां चली जाएगी। एक भाई ने सुनाया, जब बैंक में कंप्यूटर्स लगने लगे तो सारे लोग परेशान हो गए कि अभी हमारी नौकरी गई, ये कंप्यूटर रिप्लेस हो। लेकिन उस कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए, तो कंप्यूटर्स के कारण काफी और वैकेंसीज बढ़ गई। तब लोगों को थोड़ा राहत मिल गई कि नहीं, ये हमारी नौकरी खाएगा नहीं। तो ये भी एक स्वरूप ही था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके बाद मोबाइल आया, सब कुछ हाथ में आ गया। मोबाइल बहुत चीजें खा गया, घड़ी खा गया, कैमरा खा गया, कैलकुलेटर खा गया, बहुत कुछ खा गया, सब कुछ उसके अंदर समाहित हो गया। ये भी AI का ही एक स्वरूप था। वर्जन आगे बढ़ता गया और आज जो वर्जन है वो तो बहुत कुछ कर सकता है, इंसान को ही रिप्लेस कर सकता है, ऐसी ताकत उसके अंदर आ गई है। इसीलिए कहा, जब स्थापना हुई, नए विश्व के निर्माण की नींव जब डाली गई, उसी समय ये AI ने भी अपना जन्म लिया और धीरे धीरे दोनों कार्य आगे बढ़ते गए और बढ़ते 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 आज स्थापना भी सारे विश्व के अंदर, जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 140 देशों में सेंटर्स को देखते हैं, तो लगता है कि विशाल वट वृक्ष जो हो गया है, तो AI का भी बहुत विशाल वट वृक्ष हो गया है। लेकिन जो स्थापना के कार्य में मददगार बना, कई चीजें आसान कर दिया मनुष्य जीवन के लिए, कई चीजों का उत्तर देने लगा, गूगल उत्तर देने लगा हर बात का, लेकिन धीरे धीरे कहा जाता तीन कार्य जो है ईश्वर के, सृजन, विनाश और पालना। तो सृजन का कार्य तो करने में ये AI ने बहुत आगे तरक्की किया है। सब कुछ अभी AI द्वारा कंट्रोल होगा, वहां तक के दुनिया के अंदर ऐसी गाड़ियां भी निकली जो AI ही उसको चलाएगा, कोई ड्राइवर नहीं होगा। ऐसे भी देश में गाड़ियां निकलने लगी, लोग डरते तो है बैठने में, पता नहीं ये ठीक चलेगी नहीं, खाली लोकेशन डाल देना होता है और गाड़ी वहां तक ले जाती है, सेफली ले जाती है। तो ये सृजन में नए इंपोर्ट्स डालता गया है और आने वाले नई दुनिया के लिए भी, जहां पुष्पक विमान चलेंगे, कहा जाता है संकल्पों की शक्ति से पुष्पक विमान चलेंगे, ये भी AI का ही वर्जन होगा, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म का वर्जन होगा। जो देवी देवताओं के पास थे वो पुष्पक विमान चलाने वाले, है ना। लेकिन यही एआई जब विकृत हाथों में जाएगा तो महाविनाश को भी सर्जन करेगा, महाविनाश का कार्य भी करेगा, जिसका ही लोगों को आज डर है। और फिर नई दुनिया में उसकी पालना का कार्य भी करेगा। तो जिस तरह परमात्मा के भी ये तीन कार्य है, सृजन, विनाश और पालना का, ऐसे ही एआई का भी ये तीन कार्य है, सृजन, विनाश और पालना का। तब कहा कि ज्ञान कहाँ है। जब ज्ञान है ही नहीं तो मनुष्य और कंफ्यूज स्टेज में जाएगा, नेगेटिव बुद्धि बनती जाएगी। इसलिए आवश्यकता है कि अगर सचमुच अभी भी अपनी जीवन को संवार लेना है, संभाल लेना है कि कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में ये न चली जाए, तो उसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिकता का समावेश करें। आध्यात्मिकता और धर्म दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म अलग चीज है, आध्यात्मिकता अलग चीज है। आध्यात्मिकता धर्म से ऊपर है। मानवता या ह्यूमैनिटी जिसको कहा जाए, जो हर आत्मा के लिए आवश्यकता है, उस शक्ति को प्रदान करता है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज पावर। आध्यात्मिक ज्ञान में वो शक्ति है, आध्यात्मिक ज्ञान में वो प्रकाश है, जो अंधकार, अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकता है। और फिर जब ध्यान लगाते हैं उस आध्यात्मिकता के प्रकाश और शक्ति के आधार से, जब ध्यान लगाते हैं तो हमारा ध्यान जब एकाग्र हो जाता है, तो उस एकाग्रता के आधार से शक्ति वो हासिल करते हैं। इसीलिए हर चुनौती में विजयी होने के लिए यह आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन के अंदर, आचरण के अंदर, व्यवहार के अंदर उसको शामिल करना होगा। और जितना ध्यान से हम अपने मन और बुद्धि की एकाग्रता, तो कई प्रकार की सिद्धियां भीतर से भी हम हासिल कर सकते हैं। वो इंटेलिजेंस जो होंगी वो बहुत प्योर इंटेलिजेंस होंगी, पावरफुल इंटेलिजेंस होगी, पॉजिटिव इंटेलिजेंस होगी, और उसे से व्यक्ति जीवन के अंदर विजयी सहजता से हो सकता है। इसीलिए जैसे बहन जी ने कहा, भगवद गीता दुनिया का एकमात्र शास्त्र ऐसा है जिसके अंदर भगवान उवाच फर्स्ट पर्सन में है। तभी तो दुनिया के हर धर्म के लोगों ने भी उसको जानना चाहा, समझना चाहा कि आखिर भी भगवान का संदेश हमारे लिए क्या है। क्योंकि हर एक आत्मा अर्जुन है, जो अनेक प्रकार की चुनौतियों के संघर्ष में जीवन जी रहा है, और उन संघर्षों में विजयी बनने के लिए उसको आवश्यकता है विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान का, तभी वो विजयी सहजता से हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।
बहुत ही सुंदर रीति से दीदी जी ने बताया ज्ञान और ध्यान की कितनी आवश्यकता है और क्यों अध्ययन करना जरूरी है। तो जैसे दही को बिलोने से दो चीजें निकलती हैं, एक तो छाछ और दूसरा मट्ठा, जो शरीर को शीतलता भी प्रदान करता है और शक्ति भी प्रदान करता है। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन मनन हमारी आत्मा को शांति और शक्ति की अनुभूति कराता है। जब हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं, आध्यात्म का अध्ययन करते हैं। अब मैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सुनीता दीदी जी से अनुरोध करती हूँ, आज आप अपने विषय पर प्रकाश डालेंगे। राजयोगिनी सुनीता दीदी जी, जिन्होंने एमए एमएससी ई बिजनेस की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रबंधन में आध्यात्मिकता पर पीएचडी की है, एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन आप सलाहकार हैं, एक प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता हैं, ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय शांतिवन में समर्पित वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, जो पिछले 4 दशकों से राजयोग अध्ययन का अभ्यास करा रहे हैं। डॉक्टर सुनीता दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति। सभी एक बार प्यार से मुस्कुराते हुए दिल से बोलिए ओम शांति। मंचासीन, हमारे आध्यात्मिक जगत के सभी आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्ण शिव शक्तियां और तथा हमारे आदरणीय भ्राता गोपाल, श्री गोपाल जी, और साथ साथ सभा में उपस्थित सभी चुनौतियों के विजयी मीडिया कर्मी। बहुत ही सुंदर दीदी ने प्रकाश डाला आज के विषय पर और महत्व बताया ध्यान का आध्यात्मिक शक्ति के लिए। चुनौतियां बाहर है और शक्ति हमारे अंदर है। बाहर जो भी है उसमें कोई शक्ति नहीं, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, कैसी भी चुनौती क्यों न हो, वहां कोई शक्ति नहीं है। ये हम अच्छी तरह से आज समझ लें। अगर कोई शक्ति है तो वो मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, जो सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, वो शिव की शक्ति, मैं वो शिव शक्ति हूं। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति से ही चुनौतियों का सामना होगा। ये बहुत ही सत्य है, बात सत्य बात है जो हमें आज आत्मसात कर लेना है। कई बार क्या होता है, जब चुनौती सामने आती है तो हम उसी को ही लड़ना शुरू कर देते हैं, बाहर ही उसका समाधान देखना शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं कि समाधान, जो सल्यूशन है, वो हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, और वही आध्यात्मिक शक्ति है। ये आध्यात्मिक शक्ति है क्या? ये वो शक्ति है जो चाहे कितने भी तूफान हो लेकिन उस वृक्ष को उन तूफानों में खड़ा रखता है, वो फाउंडेशन को स्ट्रांग रखता है। वो फाउंडेशन है हमारे जीवन का, ये आध्यात्मिक शक्ति। और वो क्या है? वो जो आज सवेरे हमारे आदरणीय मोहिनी दीदी जी ने आप सबको अभ्यास कराया, और वो है शांति की शक्ति, वो साइलेंस पावर, ये है आध्यात्मिक शक्ति। कई बार हम सोचते हैं कि अगर उसने कुछ कहा तो मैं कोई कम हूं क्या, मैं 2 शब्द और बोलूं, मैंने अपने बाल ऐसे ही थोड़ी ना सफेद किए हैं, तो कुछ तो मैं अपना बताऊं। बोलने में हम सभी बहुत आगे रहते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक शक्ति हमें साइलेंस की ओर ले जाती है। एक पॉज जीवन में कहती है, जैसे अभी हमने ट्रैफिक कंट्रोल किया। ये ट्रैफिक कंट्रोल क्यों है? ये इसीलिए है कि हम एक स्टेप बैक करें, बाहर जो भी है बाहर उससे स्टेप बैक करें, अपने भीतर अपने आप से कनेक्ट हो जाएं, अपने परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं और वो जो शक्ति हमारे अंदर आएगी, वो शक्ति ऐसी शक्ति है, ऐसी पावरफुल ऊर्जा है कि उसके सामने तो वो चुनौतियां कुछ भी नहीं। जो परमात्मा कहते हैं वो तो पेपर टाइगर है। शक्तिशाली शेरनी शक्तियां जो आज नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, वो प्रैक्टिकल शेरनी शक्तियां। तो हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। ये एहसास करना, ये महसूस करना, ये बहुत बहुत जरूरी है। जितना हम ये करते हैं उतनी हमारी ये शक्ति बढ़ती है। मैं अपना एक पर्सनल उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी। नारीत्व दर्शन एक 13 एपिसोड का पहला प्रोडक्शन था गॉडलीवुड स्टूडियो का। वो उस समय का था जब उस समय पर एक ही कैमरा मैन था वहां पे और कोई भी टीम नहीं थी। और उस समय एक बाहर की पूरी टीम हायर करके एक सौंपा गया था मुझे। उस समय 2011 में नारी के ऊपर कुछ एपिसोड तैयार करने के लिए, आप सभी को पता है उस समय पर जो कांड हुआ था उसके कारण नारी सशक्तिकरण के ऊपर बहुत चर्चाएं हो रही थी, और इसीलिए उसके ऊपर मुझे ये बताया गया था कि कुछ क्रिएटिव किया जाए। सब कुछ हो गया, सारी शूटिंग हो गए, 13 एपिसोड तैयार हो गए, और जो टीम हायर की थी, जो डायरेक्टर था, उसने सारा रॉ मटेरियल लेकर चला गया और कहा कि अब तो और अगर आप कुछ मुझे मॉनिटरी करेंगे और ज्यादा ही कुछ वो बोल रहा था, तभी मैं ये सारा रॉ मटेरियल दूंगा और ये एडिट। आप सोचिए 13 एपिसोड की सारी शूटिंग, 2 साल से जो तैयारी चल रही, इतनी मेहनत, इतना सब कुछ किया हुआ, और 2 मिनट नहीं लगे उसको ले जाकर के वो बैठ गया कि अब मैं आपको ये वापस दूंगा नहीं जब तक आप कंडीशंस ये नहीं करेंगे। अब मेरे पास चॉइस, या तो मैं नेगेटिव होकर के होपलेस हो जाऊं, रोऊं, ये क्या हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर मैं अपने जो ये 4 दशकों से जो राज्यों का अभ्यास किया, जो मैंने अपने पूर्वज हमारे दादियों से जो सीखा कि कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको योग बल से, साइलेंस पावर से आप उसका सामना करें, तो या तो मैं वो करूं। तो ऑफ कोर्स क्योंकि मैं इस जीवन बचपन से ही इसमें समर्पित रही, तो मैंने इसी का प्रयोग किया। मुंबई में वहां पे बोरीवली सेंटर में मेडिटेशन रूम में बैठ गई मैं, और परमात्मा के आगे मैंने कहा कि कोई ना कोई मेरे ही कर्मों का है जो मेरे सामने आया है, मैं दिल से माफी चाहती हूं, और आप मार्गदर्शन कीजिए कि अब कैसे हो, क्या हो, क्योंकि इससे बहुत बड़ी सेवा होने जाने वाली है और बहुतों का इसमें तन मन धन लगा हुआ है। और मैंने एकदम अपने आप को साइलेंस कर दिया। जैसे ही मैं एकदम साइलेंस में, योग में बैठी परमात्मा की दिव्य स्मृति में, और मुझे वो परमात्मा की आवाज कि बच्ची निश्चिंत हो जाओ, मैं बैठा हूं, आप विजयी रत्न हो और ये अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट होगा। बस वो जो मेरे अंदर वो आवाज आई, मैंने तुरंत हमारे जो चेयरपर्सन है मीडिया के, करुणा भाई साहब, उनको तुरंत मैसेज किया कि भाई साहब अब ये बाबा ने कहा है, शिव बाबा ने, और अब मैं एकदम निश्चिंत हूं। और टचिंग हुई कि कुछ गूगल सर्च करें, एक नजदीक का ही एडिटर दूसरा मिल जाएगा और ये सारा कार्य स्मूथली संपन्न हो जाएगा। और सचमुच में जब गूगल सर्च किया, वॉकिंग डिस्टेंस पे एक एडिटर मिला, और उस एडिटर ने बहुत प्यार से कहा कि दीदी आप निश्चिंत हो जाओ, आपका ये कार्य ही पूरा नहीं करूंगा, आपको भी मैं सिखा दूंगा, थोड़ा बहुत जो होगा वो आप भी कर लेंगे। और सचमुच में 3 महीने रात भर जाग करके क्या एडिटिंग करना है, दिन भर उसके साथ बैठ करके एडिटिंग कराकर 3 महीने में वो सारे एपिसोड तैयार हुए। तब जाकर वो पुराने वाले को बोला कि भैया आप आ जाओ, जो भी है हम सलट लेते हैं, देख लेते हैं। तो वो आया और सारा ही जो है मटेरियल, इसके पहले ही वो उसको बुला लिया था, तब जाके ये सब एडिटिंग हुआ। और उसको प्यार से टोली खिला करके, प्रसाद दे करके, उसको विदा करके, और ये सब हुआ। और उसके बाद मैंने भाई साहब को समर्पित कर दिया कि अब आप जानो ये कैसे क्या आपको करना है। उस समय पीस ऑफ माइंड चैनल पे इसको चलाया गया था और तब उनका संकल्प था कि आप फिल्म फेस्टिवल में देखो कहीं इसको चला सको तो। तब जयपुर में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पहले गुजरात में एक नेशनल फिल्म फेस्टिवल था और उसमें जब मैंने ये रखा कि इसको आप फिल्म फेस्टिवल में चलाएं तो कहा हम तो ऐसी ऐसी फिल्म नहीं चलाते, आपको पता है लोगों को इतना मजा नहीं आता और इसमें हमको कुछ होता नहीं। तो मैंने कहा फिर भी देखिए समाज के लिए बहुत अच्छा है, आप देखिए तो सही एक बार। तो कहा अच्छा कमिटी में रखेंगे। अच्छा फिर इसका कैसे पता चलेगा? न्यूज़पेपर में आ जाएगा अगर इसको चलाना है या नहीं। 15 दिन के बाद न्यूज़पेपर में आया नारीत्व दर्शन को बेस्ट कंसेप्ट एकेडमी अवार्ड घोषित किया गया है। मैं तो जब ये सब कर रही थी निमित्त बन करके शिव परमात्मा करवा रहे थे तब तो पूरा भूल गया था कि भाई ये अवार्ड वगैरह का कुछ नहीं था, बस डेडिकेटेड कि ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन जब ये न्यूज़पेपर में पढ़ा तब आप सोचिए कि जो दिल से शिव परमात्मा के लिए मेरे दिल से शुक्रिया निकला है ना, और उसके बाद तो एक के बाद एक परमात्मा ने जैसे सिलसिला लगा दिया, शिव परमात्मा ने 100 से भी अधिक आज नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है और बहुत सारे पुरस्कार इसमें दे करके बहुत सेवाएं विदेश में भी इसको एशिया टीवी में अमेरिका के चैनल्स पे भी इसको चलाया गया। कहने का भाव है कि चुनौतियां हर कोई के जीवन में आती है। आप ये समझे कि हम यहाँ पर बैठे हैं है ना, सब कुछ डिटैच होकर के माउंट आबू में समर्पित हैं, तो क्या हमारे सामने चुनौतियां नहीं है? है, सबके सामने चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां आती ही है हमारी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए, हमें सशक्त करने के लिए। तो लेकिन जब हम साइलेंस पावर का प्रयोग करते हैं, जब हम आध्यात्मिकता का प्रयोग करते हैं, स्व पर विश्वास, एक परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, जो हमारे पूर्वज जानकी दादी जी ने कहा मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, ये मंत्र अगर हम हमेशा ध्यान रखें कि मैं शिव की शक्ति, शिव शक्ति हूँ, शिव परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, उसकी मैं संतान हूँ और मुझे क्या करना है, मुझे वही करना है जो परमात्मा का कार्य है, वही करना है जो सत्य है, वही करना है जिससे सबको प्रेम मिले, शांति मिले। तो जब इस प्रकार का मेरा लक्ष्य हो जाता है तब ऑटोमेटिकली वो चुनौती चुनौती नहीं रहती लेकिन हमारे लिए आगे बढ़ने की एक सीढ़ी हो जाती है। उस साइलेंस पावर में हमें हमारी सुनने की शक्ति बढ़ती है। एक छोटा सा कहानी बता के मैं समाप्त करना चाहूंगी कि एक संत था, एक गुरु था, उसके चेले ने पूछा कि गुरु जी भगवान की आवाज, भगवान बोल रहे हैं, भगवान की आवाज को कैसे सुना जाए, वो सुनने में नहीं आता। तो गुरुजी ने उसको सवेरे सवेरे भोर के समय एक नदी के किनारे ले गए और उस समय पर सब कुछ शांत था, वायुमंडल शांत, प्रकृति शांत, और उसको कहा अभी सुनो क्या सुनने में आ रहा है। तो उसको उस समय नदी की खल खल आवाज सुनने में आ रही थी और वैसे दिन भर में अगर देखा तो उसको वो नदी की खल खल आवाज नहीं आ रही थी लेकिन जो भोर के समय सुनने में आई। तब उसने गुरुजी ने कहा कि जैसे ही बाहर का वायुमंडल शांत और साइलेंस में है, बाहर की दुनिया जब साइलेंस में है तब आपको प्रकृति की वो आवाज सुनने को आ रही है, वैसे ही जब आपकी आंतरिक दुनिया साइलेंस और शांत हो जाएगी तब आपको आपकी अंतर्मन की आवाज और परमात्मा की आवाज को सुनने में आएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अंतर्मन में वो शांति को गहन अपने अंदर अभ्यास करें, उसको ये मेरा ही संस्कार है, ये मेरा ही स्वरूप है, उस असली स्वरूप में अपने आप को टिके, उस स्वमान में रहें। तो जब हम स्वमान में रहेंगे, जब हम स्वस्थिति में रहेंगे तो कोई परिस्थिति की शक्ति नहीं जो वो हमें हरा सके। स्वस्थिति ही हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कराती है। थैंक यू। ओम शांति।
आदरणीय दीदी जी ने अपने अनुभव से बताया, विकट स्थिति से बाहर निकलने के लिए चाहिए ईश्वर में विश्वास। हम अकेले नहीं हैं। आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है कि भगवान हमारा साथी भी है। अब मैं अगले हमारे वक्ता आदरणीय बीके चंद्रकला दीदी जी से अनुरोध करती हूँ, आप वर्ड्स ऑफ विजडम के लिए आएंगे। आपका परिचय है, आदरणीय दीदी जी 40 वर्षों से अधिक आध्यात्मिक साधना और सेवाओं के पद पर निरंतर आगे बढ़ रही हैं। आप वैशाली नगर जयपुर स्थित राजयोग रिट्रीट सेंटर की निर्देशिका हैं और जयपुर तथा आसपास के 40 से भी अधिक सेवा केंद्रों का आप संचालन करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने राजनीति शास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पत्रकारिता में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। पांच वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में समाचार संपादक के रूप में आपने कार्य किया है। आपका संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक सेवाओं में समर्पित है, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी चंद्रकला दीदी जी।
ओम शांति। मंच पर विराजित हमारे विद्वज्जन और सभा में उपस्थित प्रबुद्धजन, आज मुझे ये सोचकर बहुत बातें याद आ रही हैं, जब आज का विषय मैंने पढ़ा, चुनौतियां। ये बात सत्य है, चुनौती हर ओर है, हम कहीं पर भी नकार नहीं सकते कि चुनौती नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि हर चुनौती का समाधान भी है। रात गहराने के बाद ही सवेरा पांव फटती है, पहले रात गहराती है। हम भी देख रहे हैं आज जहां और जगत में चुनौतियां हैं, क्या कभी कारण सोचा कि ये जटिलताएं मानव के आगे क्यों बढ़ती क्यों जा रही हैं, जबकि व्यक्ति शिक्षित होता जा रहा है। पहले शिक्षाएं इतनी नहीं थी, आज डिग्रीज पर डिग्रीज हम ले रहे हैं। बच्चों के नंबर देखते हैं तो 100 में से 99 आते हैं, आपके कभी आए थे? सोचिएगा आज। लेकिन बात जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही, विजडम नहीं रहा। इंटेलिजेंसिया तो है, विजडम नहीं है। हमारे यहां पहले गुरुकुल प्रणाली थी, वैल्यूज पर काम किया जाता था, बच्चों के अंदर वैल्यूज। राजकुमार आते थे, उनके अंदर उस सेवा भाव मूल्य निखारे जाते थे कि ये जाके बड़े होकर काम करेगा, सेवा करेगा, राज्य का उद्धार करेगा, प्रजा को संभालेगा, उसके अंदर वैल्यूज चाहिए। थोड़ा सा समय बदला, हमारे स्कूलों के आगे विद्यालयों में बाहर दरवाजों पे लिखा होता था, ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। आज ये दृष्टिकोण ही बदल गया। क्या हम स्कूलों में ज्ञानार्थ प्रवेश करते, क्या सेवार्थ प्रस्थान करते? नहीं, हमारी नजरें और नजरिया दोनों बदल गए हैं। ज्ञान, ज्ञान किसको कहें? ज्ञान माने ही है जहां सद्भाव हो, सद ज्ञान हो, आत्मिक आध्यात्मिक ज्ञान हो। अब ये मूल्य बदल गए हैं, अब तो केवल वही हो गया है कि जो हमारा कोर्स है बस उसको रटना है और एग्जाम देना है, सही है? बच्चे उसको समझने की भी कोशिश नहीं करते, और सेवा अर्थ का मूल्य तो खत्म ही हो गया है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप सब जानते हैं हमारा कितना हम कमर्शियल उसमें चले गए। तो बात कह रही थी, नजरे और नजरिया दोनों बदल गए हैं। आजकल जब बच्चा आगे होता है तो कई बार ये कहने में आता है, संभाल के रखना नजर ना लग जाए। किसकी नजर लगती है? इंसान की ना। और नजर लगती है माना क्या है? उसके अंदर के बुरे भाव, मनोवृत्ति दूषित, क्योंकि नजरिया हमारा नेगेटिव हो गया है, और वो नेगेटिव होने के कारण हम दूसरों को नापते हैं, तोलते हैं और गिराने का प्रयास करते हैं, ना कि उठाने का। हमारा लक्ष्य जीवन में सहयोग का नहीं रहा, उठाने का नहीं रहा, ये लक्ष्य से हम भटक चुके हैं। इसलिए आध्यात्मिकता लक्ष्य की ओर लेकर के आती है। मानव जीवन का ध्येय क्या है, आध्यात्मिकता उस ओर लेके आती है। मुझे ये बात कहते हुए खुशी भी होती है और ये अच्छा भी लगता है। बहुत सुंदर बात किसी ने लिखी है कि जिस दिन से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, कितना मुकाम आया, कहां तक बढ़े। सिर्फ फोकस एक ही जगह है, मेरा लक्ष्य क्या है। आध्यात्मिकता मानव जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाती है। आत्मा का अध्ययन माना अपने मूल्यों को निकालना, अपने मूल्यों को सेवा में लगाना, समाज की उन्नति के लिए लगाना। और आत्मचिंतन से आत्मबल आता है, साथ ही साथ परमात्मा की दुआएं और परमात्मा की शक्ति प्राप्त होती है। तो आइए अपने चिंतन की धारा को बदलें। जब अपने चिंतन की धारा बदल जाएगी, ऑटोमेटिक चुनौतियां भी अपना रुख बदल लेंगी, जीवन शांत सरल सहज हो जाएगा। आप यहां आध्यात्मिक जगत के बीच बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है? मेरा सवाल है आप सबसे, कैसा लग रहा है ये जीवन, कैसा लग रहा है आपको? हाथ उठा के बताएंगे मंच को, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपकी वहां की दुनिया अच्छी है या ये दुनिया अच्छी है? ये दुनिया अच्छी है तो आओ मिलकर भारत को स्वर्ग बनाएं, आध्यात्मिक उन्नति को पाएं। कहा जाता, बुरा जो देखन मैं चला, आगे आगे, बुरा न मिलिया कोई और जो दिल खोजा आपना। बोलिए बोलिए, यही लाइन बदलनी है। मुझे अपने आप को अच्छा बनाना है, स्वयं अच्छे बनेंगे, स्वभावित ये जग अच्छा बन जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।
दीदी जी ने बताया हमारे जीवन में मूल्यों का बहुत ही महत्व है। जैसे कहा जाता है, आत्मा के बिना सुंदर शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता, इसी प्रकार मूल्यों के बिना जीवन रसहीन फल और सुगंधहीन पुष्प की भांति रह जाता है। यही कारण है मनुष्य के पास सब कुछ है फिर भी सच्ची शांति और सच्ची खुशी नहीं है। तो हम अपने जीवन में सच्ची शांति और खुशी को लाना चाहते हैं तो मूल्यों का अनुसरण करें, आदरणीय दीदी जी ने बताया। अब मैं अगले वक्ता हमारे बीच में हैं श्री गोपाल नारसन जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पत्रकार एवं समाज सेवी। आपसे भी मैं अनुरोध करती हूँ आज के विषय पर आप प्रकाश डालेंगे। आपने कला एवं विधि में स्नातक, पत्रकारिता में डिप्लोमा और विद्या वाचस्पति मानद उपाधि प्राप्त की है। राज्य उपभोक्ता आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता होने के साथ साथ विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर के आप कुलपति भी रह चुके हैं। आप उत्तराखंड शासन के माननीय मुख्यमंत्री के पूर्व प्रवक्ता भी रह चुके हैं। पत्रकारिता में भी आपका विशिष्ट योगदान है। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल के आप प्रधान संपादक तथा डेली न्यूज वॉइस न्यूज इंडिया चैनल के परामर्श संपादक के रूप में आप अपनी पहचान बना चुके हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। आपने 16 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। समाज में शिक्षा साक्षरता के ऊपर आपने बहुत काम किया है। तो मैं अनुरोध करती हूँ श्री गोपाल नारसन वरिष्ठ अधिवक्ता जी से।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि नवरात्रों के दिनों में यहाँ पर पांच देवियां और पांच देवियों का मुझे सीधा सीधा सानिध्य मिला और साक्षात देवियां हैं ये। और अभी हमारी एक बहन हरिद्वार से आई है, राधिका नागरथ जी, तो वो कल तक यानी आज तक वो उपवास में थी। और जो नवरात्रों का उपवास होता है उसी के अनुसार उसका पालन कर रही थी। जब वो यहाँ आई तो मैं लेने स्टेशन गया, उसके बाद उन्होंने यहाँ का पहली बार आई है वातावरण देखा, तो मैं बोली कि मैं तो 9 देवियों की पूजा कर रही थी, यहाँ तो हजारों देवियां हैं। अगर हजारों देवियों के बीच में मुझे आने का सौभाग्य मिला है तो मैं ब्रह्मा भोजन क्यों ना स्वीकार करूं। और उन्होंने ब्रह्मा भोजन स्वीकार किया है। तो ये अध्यात्म की शक्ति है, ये अध्यात्म की ताकत है। मैं कह सकता हूं हमारे गोपाल राजू जी 5 करोड़ से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर स्पिरिचुअल क्षेत्र में और ज्योतिष के क्षेत्र में काम करते हैं। ये लोग हरिद्वार के अंदर नकलक धाम में एक भव्य आयोजन करते रहे हैं। इनकी बहुत इच्छा थी कि हम ब्रह्मा कुमारीज परिसर में जाकर के वहां के रूहानी वातावरण में अपना आयोजन करें। परमात्मा शिव ने इनकी उस पुकार को सुना और 500 लोगों का एक राजयोग शिविर 21 नवंबर से 25 नवंबर तक मानसरोवर में लगने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट, अकल्ट साइंस के, कॉस्मिक के और आयुर्वेद के, वास्तु के वहां पर जुटेंगे। तो ये आध्यात्मिक शक्ति की एक ताकत है जो बाबा ने हम सबको यहाँ पर दी है। पवित्र धरा पर आबू की मीडिया जगत पधारा है, ब्रह्मा कुमारीज बहनों को देवी स्वरूपा माना है, असीम शांति मिल रही एहसास सभी कर रहे, परमात्मा का वास यहाँ आभास सभी कर रहे, ब्रह्मा बाबा निमित बने परिवर्तन यज्ञ रचाने को, मोहिनी दीदी के नेतृत्व में विश्व कल्याण कराने को, महामहिम ने स्वयं आकर रूहानियत को जाना है, ब्रह्मा कुमार भाइयों के पुरुषार्थ का लोहा माना है, मीडिया कॉन्फ्रेंस रूप में आबू की महफिल सज गई, शांति विश्वास एकता की मिसाल अनूठी बन गई, मिसाल अनूठी बन गई। तो आध्यात्मिकता मैं कह सकता हूं कि एक ऐसी नाव है जिस पर सवार होकर हम जीवन की किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आध्यात्मिक होना आवश्यक है, जिसके लिए अगर हम नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करें तो सहजता से आध्यात्मिक के रूप में हम उस चुनौतियों को पार कर सकते हैं, यानी उसमें विजय हम हासिल कर सकते हैं। शिव बाबा तुम्हारी एक झलक चाहते हैं, शिव बाबा तुम्हारी एक झलक चाहते हैं, फिर जो ना झपके ऐसी पलक चाहते हैं, फिर जो ना झपके ऐसी पलक चाहते हैं। हमारी ब्रह्मा कुमारी बहने स्वयं अध्यात्म की अलग दीपक बनकर जगा रही है, जिनके बारे में कह सकते हैं जहां रहेगी वहीं रोशनी लुटाएगी, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। मैं कह सकता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रहलाद जैसा विश्वास है, भीलनी जैसी आस है, मीरा जैसा इंतजार है और द्रौपदी जैसी पुकार है। यदि हमारा ये हम कर लें, इतनी हमारे अंदर लगन हो, तब परमात्मा को धरा पर आना ही पड़ता है। इसलिए प्रहलाद भिलनी मीरा और द्रौपदी बन सकते हैं, तभी भगवान स्वयं आपसे मिलने आएंगे और आप अपने जीवन की हर चुनौती पर विजय श्री प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात उदाहरण बताता हूं। कुछ वर्षों पहले हम चार भाई मीडिया कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे। राजधानी में हमारी टिकट थी 1, 2, 3, 4 वेटिंग में। हमें सबने कहा कि 100% ये कंफर्म हो जाएगी। हमने रुड़की से टैक्सी ली और दिल्ली आ गए। क्योंकि हम जल्दी आ गए तो हमारे साथी बोले भाई इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे, तो हमने होटल किया और वहां विश्राम करने लगे। ठीक शाम को 4:30 बजे मैसेज आया कि हमारी एक भी सीट कंफर्म नहीं हुई। हम बड़े परेशान। मैंने साथियों से कहा भाई हमारी एक भी सीट कंफर्म नहीं हुई। सबने कहा आप टैक्सी लो और वापस चलो, कोई फायदा नहीं है, ये राजधानी है, कोई घुसने भी नहीं देगा। तो मैंने 2 मिनट सोचा, फिर मैंने अपनी बहन जी को फोन लगाया, रुड़की तारा दीदी थी। मैंने कहा बहन जी हमारी एक भी सीट कंफर्म नहीं हुई, हम दिल्ली पहुंच तो गए लेकिन अब जाना संभव नहीं है, सब भाई कह रहे हैं कि वापिस आ जाओ। बहन जी ने कहा नहीं 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 ऐसा मत करना, आप स्टेशन तो नहीं गए ना, अभी आप स्टेशन जाइए और जब तक गाड़ी आए तब तक वहां प्रयास कीजिए। मैं परमात्मा बाबा से योग लगाती हूं और आप भी योग लगाइए, मेरा दावा है तुम्हें सीट मिलेगी। और बहन जी ये आश्चर्य की बात है कि हमें 4 में से 3 सीटें मिली और हम आबू आए। तो ये एक चुनौती है, अगर हमारे अंदर वो आध्यात्मिक ताकत आ जाए, परमात्मा को याद करने की ताकत आ जाए। मुझे तो एक मेरे जीवन की जो दिनचर्या है, सुबह हम परमात्मा का योग तो करते ही अमृत वेला में, लेकिन मैं 5 किलोमीटर घूमने जाता हूँ। और जब घूमने जाता हूँ तो हमारी उषा दीदी हैं, इनका मुरली मोबाइल पर आती है, मैं उसको सुनता हूँ और एक साइड में जाते जाते वो पूरी हो जाती है। तो उस वक्त मैं और मेरा परमात्मा दो ही होते हैं, कोई तीसरा नहीं होता। और उस वक्त की जो दो काम एक साथ चलते हैं, एक तो मेरा जो शारीरिक जो शरीर को स्वस्थ रखने का जो अभ्यास है पैदल चलने से, वो पूरा हो रहा है। और जो मानसिक शक्ति मुरली सुनने से होनी मिलनी चाहिए वो मुझे उसी वक्त मिल रही है, दोहरा लाभ मिलता है। तो मेरे साथियों मैं कह सकता हूं, मैं इस बात का उदाहरण हूं आपके सामने कि आध्यात्मिक अगर आपके अंदर शक्ति है तो मैं तो एडवोकेट हूं, मेरे पास तो सब समस्या लेकर आते हैं, चुनौतियां ही लेकर आते हैं। उनको पार पाने के लिए जब तक आप परमात्मा पर विश्वास नहीं करेंगे, एक बार परमात्मा को अपना बनाकर देखिए, उनसे रिलेशन बनाइए, चाहे उनसे पिता के रूप में बनाइए, चाहे शिक्षक के रूप में बनाइए, चाहे गुरु के रूप में बनाइए, चाहे किसी भी रूप में बना दीजिए, लेकिन उनसे रिश्ता बनाइए। जिस दिन आप उनसे रिश्ता बना लेंगे और आप परमात्मा को अपना बना लेंगे तो परमात्मा आपको अपना बना लेगा, ये तय है। और तब आपके सामने कोई चुनौती नहीं रहेगी, आप पूरी तरह से चुनौतियों को पार करके बाबा के प्यारे बच्चे बन जाएंगे। और जो मीडिया में जो आपका योगदान है उसमें भी निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और आप नकारात्मक पत्रकारिता को छोड़ करके सकारात्मक पत्रकारिता की तरफ निश्चित रूप से बढ़ेंगे। जैसे कि हमने उसको आत्मसात किया है, ऐसे ही आप भी उसको आत्मसात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
कार्यक्रम के अंतिम पायदान में हम पहुंच चुके हैं। भाई साहब ने बताया राजयोग के द्वारा हम कैसे परमात्मा शक्ति का अनुभव करते हैं, ईश्वरीय मदद का अनुभव करते हैं। हम सभी ये एक मानव हृदय की उच्च पवित्र पुनीत भावना है राजयोग, जिससे सात्विक प्रवृत्ति का उदय होता है। तो चलिए हम सभी आदरणीय शक्कु दीदी जी के द्वारा राजयोग मेडिटेशन की अनुभूति करते हैं, जो राजयोग मेडिटेशन हमें परमात्मा से रिलेशन और कनेक्शन जोड़ना सिखाता है, मन को सही दिशा और दशा में स्थित करता है। आदरणीय राजयोगिनी शक्कु दीदी जी, आप अपने बाल्य अवस्था अर्थात पिछले 58 ईयर्स से अपनी जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर चल रहे हैं। आप वर्तमान में घाट कोपर सब जोन की निर्देशिका हैं। आप पिछले 50 वर्षों से मुंबई में डोबीवली सेवा केंद्र एवं उसके आसपास सेवा केंद्र का संचालन कर रही हैं। आप YouTube में तत्वबोध नामक प्रेरणादायी कहानियों के वीडियोस आपके 650 पब्लिश हो चुके हैं। अपने कार्यकाल में आपने अनेक सम्मान पुरस्कार प्राप्त किए हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शक्कु दीदी जी।
ओम शांति। बहुत सुहावना समय अवसर विशाल शांतिवन के प्रांगण में हम सभी मीडिया कॉन्फ्रेंस के निमित्त एकत्रित हुए और बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं के द्वारा हम बहुत सुंदर सुंदर उनके अनुभव और विचार सुन रहे हैं। आज भी हम मंच पर उपस्थित हमारी जैसे सभी वक्ताओं ने कहा, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारी शिव की शक्तियां देवियां हाजिर हैं और साथ में हमारे गोपाल भाई जी हैं। आप सभी मीडिया कर्मी बहुत 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 ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे बहुत सुंदर धार्मिक त्योहार के निमित्त आप ऐसे पवित्र भूमि पावन भूमि पर उपस्थित हुए हैं और आप अपना भी भाग्य जमा करके जा रहे हैं, इसलिए आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। आज के विषय पर भी हम सुन ही रहे हैं कि चुनौतियों का मार्ग तो जीवन का सबके लिए है ही है। मीडिया कर्मी लोगों को भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है, पक्षपात होते हैं, असत्य की लहरें, नकारात्मक समाचारों के दबाव आदि होते हैं। अब इन चुनौतियों के बीच में रह करके भी हम कैसे मन की शांति सत्यता और सकारात्मकता को दिशा दे सकते हैं, तो उसके लिए हमारी उषा बहन जी ने दीदी ने बहुत अच्छा बताया कि उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति का आधार अति अति आवश्यक है। तो आध्यात्मिक शक्ति का आधार चुनौतियों को अवसर बना देता है और मीडिया उसके लिए साधक साधन बन जाता है कि वो समाज के अंदर शांति एकता और विश्वास को स्थापित कर सकता है। भले आज की दुनिया में झूठ का बोलबाला है, उसकी गूंज तेज है, पर सत्य की एक छोटी किरण भी जो है वो हमारी मीडिया कर्मी उनको सही मार्ग पर ले आ सकते, क्योंकि मीडिया समाज के लिए एक दर्पण है, एक मार्गदर्शक है। तो कैसे हम परमपिता परमात्मा से वो आध्यात्मिक शक्तियों को लें, ग्रहण करें और फिर अपने अंदर वो शक्तियां लेकर के विश्व में विशेष भारत में उसको हम फैलाएं और समाज के अंदर भी हम शांति एकता विश्वास की किरणें फैला सकें। हम चलेंगे कुछ 3-4 मिनटों के लिए उस यात्रा पर। मैं चाहूंगी कि सब रिलैक्स होकर के बैठेंगे तो अच्छा रहेगा और थोड़ा सीधे होकर के भी अगर बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप आराम से रिलैक्स होकर सांस छोड़ें, सांस लें और
उस परम पिता परमात्मा के पास हम चलेंगे जो हमें सर्व शक्तियां प्रदान करते हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा है सर्वशक्तिमान। उनको कहते हैं सुप्रीम पावर, पावर हाउस। हम सब जानते हैं कि ये शरीर पांच तत्वों का पुतला है, विनाशी है। इस शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, ज्योति हूँ, प्रकाश हूँ। इस संसार में एक्टर के रूप में शरीर रूपी वस्त्रों को धारण कर इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट प्ले करने आई हूँ। मुझ आत्मा का असली घर इन पांच तत्वों की दुनिया के पार, जहां मेरे परम पिता परमात्मा रहते हैं, वहां का असली घर मेरा घर है, जिसका नाम भी शांति धाम है। मुझ आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा शिव शांति के सागर हैं। मैं उनकी संतान आत्मा शांत स्वरूप हूँ। परम पिता परमात्मा शिव सर्व गुणों के भी सागर हैं, भंडार हैं, सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति पवित्रता ज्ञान। मुझ आत्मा के अंदर भी वह सभी शक्तियां विराजमान हैं, मर्ज है, जिनको मुझे इमर्ज करना है। परमपिता परमात्मा से मुझे बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हो रही है, जिन शक्तियों को धारण करके मुझे समाज में शांति एकता विश्वास की किरणों को फैलाना है। शांति की किरणें शांति के सागर पिता मेरे ऊपर बरसा रहे हैं। शक्तियों को प्राप्त कर हर चुनौतियों को मुझे सामना करते हुए विजयी बनना है, क्योंकि मैं विजयी रत्न हूँ। मेरा साथी परमपिता परमात्मा स्वयं है। विजय मेरी निश्चित है। उस परमपिता परमात्मा की याद से मैं अपने को भी सशक्त बना रही हूँ, बना रहा हूँ, और इस मीडिया के क्षेत्र में रहकर समाज राष्ट्र विश्व में भी मैं यही कर्म करूँगा करूँगी, और लाखों करोड़ों मनुष्यात्माओं के लिए मैं प्रेरणा मूर्त बनूंगा बनूंगी। इस प्रकार अगर हम परमपिता परमात्मा से अपना मन और बुद्धि से
योग लगाते हैं, इस राजयोग का अभ्यास करते हैं, निश्चित रूप से हम आत्माओं में शक्तियां आती है, सद्गुण आते हैं और हम स्वयं भी अपनी जीवन को सफल कर सकते हैं और अन्य आत्माओं के लिए आदर्श प्रेरणा मूर्त बन सकते हैं। फिर से हम अपने इस शरीर में विराजमान हो रहे हैं और इसी प्रकार के अभ्यास का दृढ़ संकल्प ले रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
कार्यक्रम के अंत में मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ, हमारी देवी तुल्य दीदियों का और हमारे भाई सब का ईश्वरीय सौगात दे करके आप सम्मान करेंगे। एक सूचना है, एक भाई की बुक गुम हो गई है। आधुनिक भारतातील प्रबोधन मराठी बुक है, जिनको भी मिली होगी डार्क ब्लू कवर की है, जिनको भी प्राप्त हुआ होगा वो स्टेज के पीछे दे देंगे। दूसरी सूचना है, कल राजयोग शिविर प्रातःकालीन जो होगा उसके बाद में जिन मीडिया कर्मी भाई बहनों को सौगात नहीं मिली है उनको कल यहाँ पर सौगात दी जाएगी राजयोग मेडिटेशन के सेशन के बाद में। स्टेज पर किसी का एक पर्स रखा हुआ है ब्लैक कलर का, जिसका भी गुम हो गया होगा वो लेकर के जाएंगे। अभी आप सभी भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे थोड़े समय में और इसके बाद में बहुत सुंदर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा डायमंड हॉल में, इसीलिए आप बहुत जल्दी भोजन ग्रहण करके आप अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और सांस्कृतिक संध्या का आप आनंद लेंगे। सांस्कृतिक संध्या आप सभी को सूचित हो, डायमंड हॉल में है, जो हमारा डायमंड हॉल बड़ा हॉल है वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन